लाइट ऑफ ट्रूथ जिसकी अंग्रेजी है, चैप्टर 3 की चर्चा कर रहे हैं, पार्ट 13 वहाँ चैप्टर है। हमने पिछले बार चर्चा की जो यम और नियम है, नियम जो ऑब्जर्वेंसेस है, पांच तरह के नियम है, शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। उनमें से हमने चर्चा की थी शौच क्लीनिनेस, संतोष कंटेंटमेंट और तपह जो एसेटिक प्रैक्टिसेस या विपरीत परिस्थितियों में एक जैसे रहने के अभ्यास। आज चौथा और पांचवा है स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। स्वाध्याय का सिंपल मीनिंग तो इतना ही है कि अगला नेक्स्ट कि स्व जमा अध्याय, स्व प्लस अध्याय मतलब खुद को, या तो खुद पढ़ो या खुद को पढ़ो, दोनों बड़े जरूरी होते हैं लाइफ में। और ये जीवन भर करने के जो कुछ थोड़ी बहुत ड्यूटीज हैं उनमें से एक है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय का सिंपल ट्रांसलेशन है सेल्फ स्टडी। अब इसको जब आप व्याख्या करेंगे ये आपकी मर्जी है, आप सेल्फ स्टडी का मतलब स्टडी योर सेल्फ और स्टडी अबाउट योर सेल्फ, आप खुद को पढ़ें या खुद दूसरे किताबों को पढ़ें, दोनों जरूरी हैं। खुद को भी समझना, खुद को भी जानना। कभी कभी हम दुनिया के सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, हम अपने पड़ोसियों के बारे में पड़ोसियों से ज़्यादा जानते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं, पर हम खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारी बुराइयाँ, हमारी अच्छाइयाँ, इनके बारे में हम या तो बड़े ओवर असेसमेंट करते हैं या बहुत लोअर असेसमेंट करते हैं। ज़्यादातर समय हम आपको गलत आंकते हैं। हम दूसरों को असेस करने में बहुत सटीक होते हैं कभी कभी, पर खुद को ज़्यादातर लोग बहुत गलत तरीके से मार्किंग करते हैं, या तो ज़्यादा मार्क कर देते हैं या कम मार्क देते हैं। इसका मूल कारण है कि हम अपने बारे में सोचने की कम कोशिश करते हैं, अपने बारे में खुद को समझने की बहुत कम कोशिश करते हैं कि हमारा खुद का माइंडसेट क्या है, क्यों मैं ऐसा हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं होता तो क्या होता। ये जो स्व का अध्ययन हम कम करते हैं, इसीलिए जीवन में बदलाव कम आ पाता है उन लोगों में। वो हर चीज़ को जानने के बावजूद भी जैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि खुद के बारे में बहुत कम स्टडी करते हैं, बहुत कम अध्ययन करते हैं। हम बच्चों को सलाह देने में बड़ा अच्छा समझते हैं, या पड़ोसियों को सलाह देने में भी अच्छा समझते हैं, पर खुद को कभी सलाह देते नहीं है। क्योंकि खुद को सलाह इसलिए नहीं देते हैं कि हमें लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मुझे ये पता नहीं है कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि नहीं। स्वाध्याय का जो दूसरा अंग है, शास्त्रों को या किताबों को पढ़ते रहना। जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप कितने साल के भी हो जाएं, जो पढ़ना छोड़ देता है उसकी जो 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 प्रोग्रेस है, जो जो आगे बढ़ने की जो 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 प्रक्रिया है, वो रुक जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में बहुत बार हमने चर्चा की है, जब गुरुकुलीय परंपरा में जब विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल से बाहर जाता था तो गुरु उसको जो आशीर्वाद देते थे, और आगे जाकर आपको क्या करना है इसके बारे में कुछ उपदेश देते थे। उनमें जो तीन चार उपदेश हैं उनमें यही एक है, सत्यम वद, जो बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, भाई सच बोलो, धर्मम चर, जीवन में जो राइटियस है, जो जो सही है उसी का आचरण करना। स्वाध्यायानम प्रमद, जो तीसरा लेसन देते हैं गुरुजी, कि जो सेल्फ स्टडी है, जो खुद पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, उसमें कभी भी उसको कभी इग्नोर नहीं करना, उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं किताबों से आप सीखते हैं, आप कहीं से भी सीखें, सीखने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। अध्यात्म में स्वाध्याय की जो दो दो लक्षण, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपश्च। क्योंकि जो लोग योग दर्शन जो है वो मुक्ति का ग्रंथ है, तो वो ऐसी बातें बताता है जो जो अध्यात्म में जरूरी है। जो अध्यात्म में जाने वाले लोग, जिनको खुद को समझने की कोशिश करनी है, उनको दो चीजें करने की जरूरत है स्वाध्याय में। एक तो ऐसे किताबों की, ऐसी चीजों की पढ़ने की आदत डालें जिसमें जो आपको मुक्ति के लिए रास्ता बताए, जो आपको आजादी के लिए रास्ता बताए। आजादी, गुलामी से आजादी का वही मतलब है जो शरीर से आजादी का जो मतलब है। आजादी का सिंपल मीनिंग है कि किसी दूसरे के अधीन होकर के नहीं जीना। वो दूसरा कोई देश हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, मेरे अंदर मेरे शरीर के कोई अंग प्रत्यंग हो सकते हैं, मन बुद्धि कुछ भी हो सकता है, किसी से भी आजादी। और अध्यात्म भी जो मुक्ति या मोक्ष, उसका भी यही मतलब है कि हमें आजादी चाहिए। क्योंकि आजादी का जो सुख है वो और किसी के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा नमूना देखिए, दुनिया में अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं, सरकार हैं, देश हैं, अलग अलग तरह के कानून हैं, पर सारी दुनिया में ये एक कानून जरूर है कि जो अपराधी है उसको जब आप सजा देते हैं तो आप उसको जेल में डालते हैं। जेल में तो बाहर के हिसाब से अच्छा खाना वो खाना खाता है, अगर बीमार पड़े तो डॉक्टर अवेलेबल होता है, आपको दुश्मनों से आप पर खतरा कम रहता है, जेल ज्यादा सुरक्षित है। पर उसके बावजूद भी जेल क्यों भेजा जाता है, हर आदमी जेल से क्यों घबराता है? इसके पीछे जो फंडामेंटल थॉट है कि व्यक्ति की आजादी छीन ली जाए। आपके पास सब कुछ है, आपको राजमहल में रख करके अच्छे से अच्छा खाना और कपड़े दिया जाए, पर आपको ये बोला जाए कि राजमहल से बाहर आप निकल नहीं सकते हो, तो आप 24 घंटे उस अच्छे खाने में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे घर में भी आप दुखी नजर आएंगे। एक बच्चे को वो अपनी मर्जी से दिन भर घर में रहे, बाहर ना निकले, अपना कमरा दरवाजा बंद करके रहे, पर अगर आपने बोला कि आधे घंटे के लिए दरवाजा से बाहर नहीं निकलना, तो वो हर 5 मिनट में उसको फुसफुस पेशाब लगेगा, उसको और कोई बीमारी होगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ये क्या है? जब भी व्यक्ति दूसरों के गुलाम होने का एहसास करता है, दूसरों की मर्जी से चलता है, तो उसको बेचैनी होती है। यहां तक ये सिर्फ इंसान के नहीं, पशु पक्षी की भी यही आदत है। आप पशुओं को बांध के कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, पर आप उनको छोड़ दें, वो सूखे जंगल में सूखी घास खाने को तैयार है, पर आपके घर वापस आने को तैयार नहीं है, जेल में पिंजरे में बंधने के लिए। प्यार करें तो हो सकता है अपने आप आ जाते हैं, जैसे कुत्ते बिल्लियों को आप इतने ज्यादा प्यार करते हैं कि वो घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आप, पर आप अगर हमेशा आप गले में रस्सी बांध के रखें तो नहीं आने वाले। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आजाद होना, और जब भी वो गुलामी के एहसास करता है वो वहीं से उसको दर्द होता है। इसलिए हमारे जो संस्कृत में बहुत सारे नीति शास्त्र होते हैं तो उसमें ये आता है कि खुद के घर में, वो यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत में बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, कभी आपको मौका मिले जरूर पढ़िए। तो यक्ष युधिष्ठिर को पूछता है, बोलिए दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, राजमहल में नौकरी कर किसी के नीचे गुलाम बन के अच्छा से अच्छा खाना खाना भी सबसे बड़ा दुख है, अपनी इच्छा से अपने फटे टूटे झोपड़ी में रह करके साग चबात खाना भी सुख है। इसका जो 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 भावार्थ है कि जो आजादी है, जो अपनी इच्छा से जीने की जो प्रक्रिया है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और यही सिद्धांत लागू होता है मोक्ष और मुक्ति में भी। जब हम दूसरे इंसान दूसरे व्यक्ति के अधीन होते हैं, जैसे हमें परेशानी होती है इसी तरह हम इंडिविजुअली भी गुलाम होते हैं अपने मन के, अपने अपने इंद्रियों के, अपने शरीर के, और इसीलिए हमें दुख होता है। हमारी ज़्यादातर बीमारियों का कारण हम अपने इंद्रियों के गुलाम होते हैं, क्योंकि मेरा जीव चाहता है कि मैं खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं, चटपटे खाऊं, वो खाऊं, इसीलिए हम खाते हैं। हमें पता है कि इसको खाने से मेरा क्या नुकसान होगा, उसके बावजूद भी मेरे जीव मुझे कंट्रोल करता है, मैं अपने जीव को कंट्रोल नहीं करता हूँ। ज़्यादातर बीमारियों का कारण वही होता है, मैं वो नहीं सुन पाता हूँ जो मुझे सुनना है, मैं वो सुनता हूँ जो मेरे कान मुझे कमांड करता है सुनने के लिए, मैं मजबूर होता हूँ कान की उस इच्छा के सामने सुनने के लिए, मैं आँखों से वो देखना चाहता हूँ जो मेरे आँखों को पसंद है, आँखें मुझे मजबूरन ले जाती है, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ता है क्योंकि आँखें मेरी मजबूरी मजबूर करती है। ये क्या है, ये जो हम खुद के शरीर के, खुद के इंद्रियों के जो गुलाम होते हैं, और इसीलिए जो चिंतक है, सोचने वाले लोग हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे भी मुक्ति बड़ी जरूरी है, आज़ादी जरूरी है उस परम सुख को पाने के लिए, इसीलिए उन्होंने मोक्ष की चर्चा हुई। जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, मोक्ष में, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी तरह के किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये अच्छा है कि आप जिंदगी भर मेडिकल साइंस का कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, उनकी मैगजीन पढ़ते रहें, क्योंकि हर रोज़ नई नई चीज़ें मेडिकल फील्ड में, नई नई चीज़ें आते रहते हैं। अगर आप पढ़ाई बंद कर दी, 35 साल पहले आपने MBBS या MD की, 30 साल पहले, उसके बाद आप सिर्फ अपनी प्रोफेशन में लगे रहे, आपने कभी जिंदगी में अपने अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया, तो आप एक एवरेज डॉक्टर बन के जिंदगी भर रह जाएंगे। तो स्वाध्याय, जिस भी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहें उस फील्ड में स्वाध्याय बड़ा जरूरी होता है। इसी तरह जिन लोगों को खुद को जानने की इंटरेस्ट है, खुद को समझने की जरूरत है, उनको मोक्ष शास्त्र, मतलब ऐसे शास्त्रों की पढ़ने की जरूरत है जहाँ मुक्ति के बारे में चर्चा है, जैसे उपनिषद है या जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है, दर्शन है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है प्रणव जप। प्रणव का अर्थ होता है ओम, और ओम का मतलब ईश्वर का नाम है, हमने पहले भी चर्चा की है। जैसे मान लीजिए आप कहें कि मैं गोपाल से बात करना चाहता हूं, तो गोपाल का जो जो लिटरेरी मीनिंग है वो गाय पालने वाला, पर आप गोपाल कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है जिसका नाम गोपाल है, आप जब गोपाल के बारे में कोई बात करते हैं तो वो उस इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है। इसी तरह जब आपको कोई कहे कि आप ओम का ध्यान करो, इसका अर्थ ये नहीं है, होता शास्त्रों में अगर कोई व्यक्ति कहे तो मुझे नहीं पता उसका क्या इंटेंशन है, पर अगर कोई शास्त्र में आपको पढ़ने को मिला कि ओम का ध्यान करो, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप आऊ माँ का ध्यान करो, ओम ईश्वर का नाम है, आप ईश्वर की भक्ति करो, ओम की भक्ति, ओम तो एक नाम है, गोपाल एक नाम है, आप गोपाल को थोड़े ही आप पैसा, आप कहेंगे गोपाल को $100 दो, गोपाल नाम को क्या आप $100 देंगे, तो गोपाल जिस व्यक्ति का नाम है आप उसको देंगे। इसी तरह ओम ईश्वर का नाम है, अगर ओम की भक्ति करनी मतलब आप ईश्वर की भक्ति करिए, तो स्वाध्याय का दो अर्थ है, ईश्वर की भक्ति करना और स्व का, खुद का अध्ययन करना, और स्वयं अध्ययन करना, शास्त्रों की किताबों को पढ़ना, ये स्वाध्याय था। दूसरा है जो पांचवा नियम है, ईश्वर प्रणिधानम। प्रणिधान में जो शब्द है प्रणिधान, मतलब पूरी तरह सब कुछ किसी के पास रख देना, ईश्वर के पास पूरी तरह अपने आप को रख देना। रख देना मतलब कि अपने आप को सरेंडर कर देना कि मैं कुछ नहीं, यही इसी का दूसरा नाम होता है भक्ति। भक्ति का अर्थ ही होता है अपने आप को किसी के पास सौंप देना, ये पांचवी अवस्था है। महर्षि व्यास उसकी व्याख्या करते हैं, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन गुरु परम गुरु सर्वकर्मार्पणम तत्फल संन्यासुवा। उस परम गुरु, वो द सुप्रीम टीचर, गॉड ऑफ गॉड्स, जो परमात्मा है, उसके पास अपने सब सब कुछ को सौंप देना। सौंप देने का अर्थ नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के आप नंगे होकर के बिना खाए पिए बैठे रहें, ऐसा अर्थ नहीं है। सौंपने का अर्थ शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। जो जिसके पास जो सब कुछ त्याग भी देता है, वो आपसे ज्यादा बड़ा भोगी दिखाई देता है। आप क्या शारीरिक रूप से छोड़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप मन से कितना छोड़ रहे हो। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में ज्यादातर जो सो कॉल्ड त्यागी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो परिवार त्यागते हैं, नौकरी त्यागते हैं, पैसा कमाना जिस भी प्रोफेशन में थे उसको त्यागते हैं, और हमें लगता है कि ये इन्होंने त्याग दिया और बहुत ऊंचे बन गए, क्योंकि वो त्यागी बने। शारीरिक रूप से उन्होंने त्यागा, पर जब आप सचमुच उनके अंदर झांकते हैं, वो किसी भी आम आदमी जो बटोरने में भरोसा रखता है, जो अक्यूमुलेशन में भरोसा रखता है, उससे बेटर उनकी माइंडसेट नहीं होता। तभी तो वो घर छोड़ के आश्रम के लिए चंदा मांगते हैं, डोनेशंस मांगते हैं। तो ये नकली है। अगर आपको पैसा ही मांगना था तो आप कमाते, नौकरी छोड़ने, काम छोड़ने की जरूरत नहीं थी। पर पब्लिक को मैसेज देना जरूरी है कि मैं त्यागी हूं। आपको अगर आश्रम ही बनाना था पैसे से, तो आप अपने जो जो धंधा, जो प्रोफेशन आप कर रहे थे, उसको बनाए रखते, उस पैसे को खुद के लिए खर्च ना करके आश्रम के लिए करते। नहीं तो ये खैर हिपोक्रेसी की कभी और तरह चर्चा करेंगे। तो सिंपल सा अर्थ है, जब आप मन से छोड़ देते हैं, आप राजमहल में रहते हैं या कुटिया में रहते हैं या जंगल में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका उसके प्रति लगाव कितना है। अगर लगाव है तो वहीं से आप उसी के साथ भक्ति करते हो। वही ईश्वर की भक्ति का अर्थ है, जब आप सब कुछ ईश्वर के लिए सौंप देते हो, खुद को कहीं नहीं रखते हो। आप अपने घर में रहते हुए भी इस भावना को आप कल्टीवेट करते हो कि ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ है। इससे जो हमारे अंदर की मन की निर्मलता होती है, जो मन की सफाई होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे सुख के लिए, हमारे शांति के लिए, और हमारी जो हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बड़ी जरूरी चीज होती है। जब हम इस मनोदशा के साथ, इस माइंडसेट के साथ जीवन में जीते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मैं निमित्त हूं। हम कितने साल जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 100 साल? 100 साल एवरेज है, थोड़ा आप ज्यादा जिएंगे, थोड़ा कम जिएंगे, पर ये संसार करोड़ों 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 सालों से है और आगे भी रहने वाला है। वो जमीन वही के वही है, वो पेड़ पौधे वही है, वो सब कुछ वही है। वो जिस नोट को हम गिन करके खुश होते हैं, कितने लाखों लोगों के हाथ से गिन करके आया होगा। जिसके हाथ में नोट आता है वो खुश होता है, फिर वो और किसी को देता है वो खुश होता है। हमारे पास दूसरे नोट्स आते रहते हैं और हम चले जाते हैं। इसीलिए जो इस तरह के भावना को कल्टीवेट करता है, अपने अंदर जो इसको उगाता है, उसको बढ़ावा देता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वरीय है, तो वही उसी को हम भक्ति कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की जो परिभाषा दी गई, भक्ति सातु परम प्रेम रूपा, कि जब परम प्रेम हो जाए, प्रेम तो प्रेम है, प्यार है, बोले जो परम प्रेम हो जाए, जो सुप्रीम लव हो जाए, तो वह भक्ति है। अब ये परम प्रेम और प्रेम में क्या अंतर है? प्रेम तो हम सब करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, मां बाप से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं, अलग अलग। फिर ये परम प्रेम क्या होता है? जिसको हम प्यार कहते हैं, वो एक तरह के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक मुझे आप मेरे अनुकूल हैं, तब तक आप मुझे अच्छे लगते हैं, और उस अच्छे लगने को मैं प्यार कहता हूं, पर ये प्यार तब तक है जब तक आप मेरे अनुकूल हैं। जिस दिन आपका व्यवहार मेरे प्रतिकूल होता है, मेरे विरोध में होता है, मेरे मन के विरोध में होता है, मेरी इच्छा के विरुद्ध में होता है, तब मेरा प्यार आप में कम होने लगता है और खत्म हो जाता है। वो प्यार फैमिली रिलेशन में हो या सोशल रिलेशन में हो या कहीं भी हो, या आपके बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो पति पत्नी में हो, माँ बाप बच्चों में हो, किसी में भी हो, जब तक आप मेरे इच्छा के अनुकूल हैं, इसका अर्थ नहीं कि हमेशा हमको डिमांड करते हैं, पर अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें ऐसे ही होना है, जरूरी नहीं तुम मेरे लिए कुछ करो। वही जो इच्छा है, वो इच्छा के विरुद्ध जब जाने लगता है बच्चा, तो हमारे प्यार घटने लगता है। पति पत्नी के रिलेशन भी यही है। तो ये जिसको हम जो सांसारिक जिसको प्यार कहते हैं, वो एक तरह की हमारी हमारे खुद के स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और जो मैत्रेय का संवाद है, तो याज्ञवल्क्य मैत्रेय को, मैत्रेय याज्ञवल्क्य को कहती है कि लोग जिससे भी प्यार करते हैं वो इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। पति पत्नी से प्यार करता है या पत्नी पति से प्यार करती है क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। पिता माता बच्चों से प्यार करते हैं क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। हम संसार से प्यार करते हैं क्योंकि खुद से प्यार करते हैं। खुद को सेंटर में रख करके हम फिर प्यार करने लगते हैं। पर जो परम प्रेम है, जिसको भक्ति का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जहां आप सेंटर में नहीं है, जिससे आप प्यार करते हैं वो सेंटर में है, मतलब आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं किसी दूसरे की खुशी के लिए, किसी दूसरे को सेंटर मान करके। ये रिलेशनशिप में भी दिखता है, जब माँ बाप बच्चे की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करते हैं, या बच्चे माँ बाप के लिए खुशी के लिए खुद को कुर्बान करता है, या पति पत्नी एक दूसरे के लिए करते हैं, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है, या कोई दो फ्रेंड एक दूसरे के लिए करते हैं, या कोई एक देश दूसरे देश के लिए करता है, कोई भी किसी के लिए, जब मैं खुद अपने प्यार के सेंटर में नहीं हूं तो वो सुप्रीम हो जाता है। इसी को कहते हैं भक्ति। और हम देखते हैं, और ये भक्ति ऐसी ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति है कि जो चीजें आप बिना प्यार किए सोच भी नहीं सकते करने की, जब भक्ति प्रबल हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी दो चार एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप समझ पाएंगे भक्ति कितनी कितनी ताकतवर है। दुनिया में जितने भी देशों में आजादी की लड़ाइयां होती हैं, सबसे पहले आजादी की लड़ाई जो गुलाम देश, जैसे हम भारत में जब आजादी की अब इतिहास पढ़ते हैं, आजाद की लड़ाई के इतिहास पढ़ते हैं, तो क्या किया जाता है, जो बड़े लोग हैं वो लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाते हैं, गानों से, स्लोगान से, व्याख्यानों से। और वो भक्ति जब प्रबल हो जाती है तो राजगुरु, भगत सिंह, आजाद जैसे लोग खुद को बलि देने के लिए तैयार होते हैं। उनको ब्रिटिशों ने खूब सताया, खूब अत्याचार किया, खाली फांसी दे देना तो बड़ी बात नहीं है, कितने शहीद हैं जिनको शारीरिक रूप से ऐसी ऐसी यातनाएं दी, आप सोच भी नहीं सकते। पर उनको वो दर्द, जो वो अगर एक आम इंसान के रूप में दर्द होता तो वो तिलमिलाते, छोड़ देते, पर उस समय वो हंस हंस करके उसको सहते हैं क्योंकि उनको किसी के प्रति भक्ति है, देश के प्रति, और उस देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। ये जो आप रोमियो जूलियट की कहानी पढ़ते हैं, भाई इस तरह के हजारों कहानियां पढ़ते हैं, उसके पीछे भी यही फिलॉसफी काम करता है कि जब आप दूसरे के लिए खुद के दर्द को आपको एहसास ही नहीं होता है, आप खुद को मिटाने के लिए तैयार होते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। जब प्रेम आपको सेंटर ना बना के दूसरे को सेंटर बनाने लगे, जिसके लिए आप सब कुछ सरेंडर करने को तैयार बैठे हो, और इसी कारण भक्ति बड़ा खतरनाक भी है। भक्ति बड़ी अच्छी है अगर आप सही जगह पर आप भक्ति करते हैं, पर खतरनाक है कि आप उसी भक्ति को गलत जगह कर बैठते तो किसी गलत व्यक्ति, गलत पर्पस, गलत उद्देश्य के कारण खुद को बर्बाद करते हैं। जो टेररिस्ट है, ये क्या है? ये भी एक भक्ति से पैदा हुआ क्रिएशन है, टेररिज्म। कुछ लोगों को अपने धर्म के प्रति इतनी ज्यादा भक्ति है, उनको लगता है कि हम खुद को बलि देश मार सकते हैं, हम दूसरों को मिटा सकते हैं, खुद के अंदर बम बांध के घूमते हैं। क्यों भाई? हमारे धर्म को हमें आगे बढ़ाना है, वह जो भी करना है। और एक खतरनाक नस्ल है भक्तों की, बाबाओं की, भक्तों की। बाबा जेल में भी सड़े, सारे करप्शन प्रूफ हो जाए, पर वो भक्त मानने को तैयार नहीं। ये जो भक्ति की जो ताकत है, ये समझने की बात है। लोग गलत जगह इस्तेमाल करते तो भी गलत लोगों को फायदा होता है, आप उसको सही जगह इस्तेमाल करें, सही फायदा मिलेगा। जब आप उस परमेश्वर में ये भक्ति करते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह वैसे ही सरेंडर कर देते हैं जैसे आजकल के कुछ भक्त अपने बाबाओं के पास अपने मन, तन, धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। बाबा इसका मिसयूज करता है, ईश्वर को यूज ही नहीं करता है। दैट इज द डिफरेंट बिटवीन आपका गॉड और यूनिवर्सियल गॉड। में ही नेवर यूजेस यू, बट योर सो कॉल्ड गॉड मैन मिसयूजेस यू। अब इसलिए मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, अगर भक्ति करना है सिर्फ ईश्वर से भक्ति करो, बाकियों को रेस्पेक्ट दो। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम और हर, पर आपका डिवोशन सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के लिए हो। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ क्या है कि जब भी आप किसी के प्रति भी भक्ति करें, अब इंसान को करे, पत्थर को करे, ईश्वर को करे, माँ बाप को करे, कि भक्ति का अपना फल होता है कि वो आपको पोलाइट बनाता है, वो आपको हम्बल बनाता है, वो आपको निर्मल बनाता है, वो आपको प्योर बनाता है, वो आपके अहंकार को तोड़ता है, वो आपको ज्यादा सुख और शांति से भरा हुआ देता है। ये भक्ति का अपने आप, ये एक साइकोलॉजिकल रिजल्ट है। इसके लिए किसी व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के प्रति भक्ति करते हैं तो आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो आपके अंदर ये सब होंगे। इसीलिए पतंजलि खुद योग दर्शन में, पूरे योग दर्शन में चार चैप्टर हैं, करीब 200 से ज्यादा उसमें सूत्र हैं। पतंजलि ने सिर्फ 3 बार ईश्वर का नाम लिया है। कब? उन्होंने कहा भाई योग करो, योग का मतलब है मन को रोकना, मन को रोकने से आप खुद को जानोगे वगैरह वगैरह। उसकी तरीका है अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट कल्टीवेट करो, वैराग्य करो। अगर उस साधना में, उस प्रक्रिया में आपको मुश्किल हो, आपको रास्ता आसान ना लगे, तो ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर की भक्ति करो, इट विल बी मोर इजी। दूसरी बार कहा कि जो लोग पहली बार इस रास्ते में आना चाहते हैं उनको मुश्किल होगा, तो थोड़ा उनको ब्रिज कोर्स करने की जरूरत है, मान लीजिए आप स्ट्रीम चेंज करते हैं अपनी पढ़ाई में, आप एक स्ट्रीम के पहले से पढ़े हुए हैं, आपने मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और आपको लगा कि नहीं अब मैं साइंस में जाऊंगा, मैं किसी पॉलिटिकल साइंस में जाऊंगा, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो आपको 6 महीने, 1 साल, 3 महीने जो भी अलग अलग होता है, कि ब्रिज कोर्स करनी होती है, जिस बीच में आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो आज तक आपको पता नहीं था, कि ये जो नया सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हैं वो क्या चीज है, उसको ब्रिज कोर्स टाइप की अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते होंगे। तो इस तरह जो व्यक्ति पूरी तरह नया है योग मार्ग में और वो आना चाहता है, तो पतंजलि उसके लिए एक रास्ता सुझाते हैं और उसका नाम है क्रिया योग। और कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अगर आप इस रास्ते में आना चाहते हो तो ये एक ब्रिज कोर्स करो, उसमें 3 चीजें करने की है। तप करो, अच्छे बुरे जैसे पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, सहने की आदत डालो, गर्मी सर्दी निंदा प्रशंसा, इसको अपने लाइफ में आदत डालो इनको सहने की। दूसरा है स्वाध्याय, जिसकी चर्चा अभी हमने की, खूब किताबें पढ़ो, ईश्वर को ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करो, और तीसरी है कि ईश्वर भक्ति करो, रास्ता आसान होता है। और तीसरा ये नियम के अंग में आता है, मतलब भक्ति का अपना फल है कि अगर आप भक्ति अंदर वो परम प्रेम किसी दूसरे के लिए खुद को सौंपने को मिटाने को तैयार होते हैं, तो आप पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और अगर परमेश्वर के लिए करते हैं तो सचमुच आप उस दिव्य सत्ता के फल को भी प्राप्त करते हैं। तो दो उपाय बताया ईश्वर प्रणिधान के लिए, या तो जो कुछ आप करते हैं वो सब कुछ उसी के लिए सौंप दीजिए, आप किसी के लिए भी करिए कुछ भी करिए, मन में ये विचार कल्टीवेट करिए कि ये सब ईश्वर के लिए कर रहा हूं। अगर ये मुश्किल है तो तत् फल संन्यास, जो कुछ कर रहे हैं उसके रिजल्ट जो कुछ होगा सब उस पर छोड़ दीजिए, उसी पर सारे रिजल्ट को छोड़कर काम करिए। ये पहला स्टेप है ईश्वर की ओर भक्ति करने के लिए। ये 5 नियम के बारे में हमने चर्चाएं की, दोबारा रिपीट कर देते हैं। शौच मतलब सफाई, संतोष हर परिस्थिति में जितना मेरा सामर्थ्य है उसके बदले मुझे जो मोले मिले उसमें खुश रहना, कंटेंटमेंट। तपह हर जो पेयर ऑफ अपोजिट है, जो दो विरोधी चीजें हैं उन दोनों में एक जैसी मेंटेलिटी रखना, अच्छा या बुरा, निंदा या प्रशंसा। स्वाध्याय खुद को पढ़ो और खुद पढ़ो, और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति करो, ये नियम है। स्वामी जी स्वामी दयानंद ये योग के पूरे दशों, नेक्स्ट स्लाइड, इन इन दशों की, और पहले हमने यमों की चर्चा की, अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य, और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं बनानी। स्वामी जी कहते हैं ये दोनों को जब आप करने की प्रैक्टिस करने की इच्छा करो तो दोनों को साथ साथ करो, केवल नियमों को करोगे तो अंधेरे में गिरोगे। नियम एक ऐसा चीज है जो शौच संतोष तप, इसमें हिपोक्रेसी की बहुत संभावना है, मतलब आप अंदर गंदा होकर भी बाहर साफ दिखाई अपने आप को दिखा सकते हो। आप साफ कपड़े पहनिए, अपने आप को बिल्कुल साफ रखिए, तो आप अपने आप को साफ दिखा सकते हो गंदा होने पर भी। जैसे भी हमारे घर में जो रेगुलर जिस तरह हम रहते हैं, और मान लीजिए कोई गेस्ट आता है पहले बताकर आता है तो बिल्कुल अलग होता है, तो उससे पहले कि हम बिल्कुल तैयारी कर देते हैं, साफ सफाई कर देते, तो सफाई में हिपोक्रेसी की संभावना है। संतोष में हम खुश ना भी हो तो पब्लिक में हम खुश दिखाते हैं, दिखा सकते हैं। हमें गर्मी सर्दी में कितने भी प्रॉब्लम हो पर किसी को इंप्रेस करने के लिए हम गर्मी में भी सह जाते हैं। हम पढ़े ना पढ़े हम अपनी ड्राइंग रूम में हजारों किताबें सजा के रख देते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति हो ना हो हर हफ्ते मंदिर में माथा टेक लेते हैं, पंडित जी के पैर छू लेते हैं, गीता भागवत पढ़ लेते हैं, और लोगों के सामने ये एक जो फॉल्स अपीयरेंस अब प्रस्तुत कर देते हैं कि मैं ईश्वर भक्त हूं। ये खतरनाक, केवल नियम को, ये नियम वाले जो पांचों चीजें, ये बड़े डेंजरियस होते हैं अगर इनके बैकग्राउंड में यम नहीं है। यम मतलब अगर आप अहिंसा को दिल में नहीं उतारते, अगर आप सच को दिल में नहीं उतारते, अगर आप चोरी ना करने की प्रवृत्ति को, तो चोरी ना करने का क्या अर्थ है हम डिफाइन कर चुके हैं पहले, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी के घर में सामान उठाएं, कि प्रवृत्ति को दिल में नहीं कल्टीवेट करते हैं, आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करते हैं, या सामान इकट्ठा करने की जो बीमारी है उससे आप छुटकारा नहीं पाते हैं, अगर इन पांचों चीजों की प्रैक्टिस आप साथ साथ नहीं करते तो ये नियम आपको हिपोक्रेट बना देगा। और ये जरूरी है, दोनों जरूरी है, पर स्वामी जी का जोर है, दीज आर फाइव नियमाज, द नियमाज शुड नॉट बी फॉलोड विदाउट द यमाज, बट बोथ शुड बी फॉलोड टूगेदर। He who follows the niyamas alone without the yamas cannot progress but falls down, remains sunk in the worldliness. ये शंका स्वामी जी को क्यों है? क्योंकि ज्यादातर धर्म के नाम पर हम नियमों को ज्यादा फॉलो करते हैं। भाई दोनों टाइम आप किसी पंडित जी को, बाबा के पास जाइए, सुबह उठ के नहाते हो कि नहीं नहाते हो, मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो, अमुक पुस्तक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अमुक मंत्र का जप करते हो कि नहीं करते हो, आपके जो भी गुरु लोग होंगे वही सलाह देते होंगे, अमुक ध्यान करते हो कि नहीं करते हो, ये क्या है? ये ऊपरी चीजें हैं, ये करना बड़ा आसान है, और इससे सिर्फ और सिर्फ हम हिपोक्रेसी ही कल्टीवेट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। और यही होता है पूरे संसार में, रिलीजियन के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है इट जस्ट हिपोक्रेसी। व्यक्ति हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, भक्ति करता हो नहीं करता हो, या वो एथिस्ट हो, उसके चरित्र में बदलाव कम दिखता है, उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं दिखता। वो ईश्वर को मानने लगा तो उसकी बेईमानी कम हो गई, उसकी अहिंसा का कंसेप्ट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके चरित्र में अच्छाइयों में कुछ उन्नति कम दिखती है, बुराइयों में घटाव कम दिखता है। आप देखिए ये जो 21वीं शताब्दी है, जो 21 सेंचुरी में हम हैं, पूरे दुनिया में धर्म बहुत उछाल पर है। उछाल समझते हैं, बहुत 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 ऊंचा बढ़ गया है, चारों तरफ आजकल धर्म ही धर्म है, मंदिरों का बाढ़ आ रहा है, बाबाओं के बाढ़ आ रहे हैं, पैस्टर्स की, फादर्स की, नंस की, आचार्यों के, स्वामियों के बाढ़ आ रहा है, चारों तरफ फैले हुए हैं, भक्तों की संख्या में कम नहीं, एक एक बाबा के प्रवचन में लाखों लाखों लोग बैठते हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो कलयुग में स्वर्ग आ गया है। पर रियल लाइफ में क्या ऐसा दिखता है? बेईमानी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, क्रूरता, जो क्रुएलिटी बढ़ रही है, सब कुछ, मतलब धर्म भी बढ़ रहा है और बुराइयां भी बढ़ रही है, मतलब दोनों ऐसे लग रहा है जैसे दोनों जुड़वा भाई है, कि यू कैन बी ए गुड रिलीजियस पर्सन एंड यू कैन बी ए मोस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा इसीलिए हुआ, और जिसको स्वामी जी 150 साल पहले बांधते हैं, ये तभी होगा जब आप केवल नियमों पर जोर देंगे। यम इंडिविजुअल है, ये खुद को अंदर प्रैक्टिस करने के लिए है, नियम भी प्रैक्टिस करने के लिए है, पर इसका एक प्रॉब्लम है कि आप ना भी करें लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं करता हूं, आप अहिंसा दिखा नहीं सकते कि मैं अहिंसक हूं. यू हैव टू प्रूव इट. यू कैन नॉट शो इट दैट आई एम अहिंसक. आपको अहिंसा ये आप प्रूफ नहीं कर सकते. आप सत्य सच्चा नहीं है. आप अपने आप को सच्चा दिखा नहीं सकते. आपको सच्चा होना पड़ेगा. पर आप बिना सफाई किए साफ हैं ये दिखा सकते हैं. 15 दिन तक मत भी नहीं है तो भी एक नया कपड़ा पहन लीजिए, परफ्यूम स्प्रे कर लीजिए, हो गया, आप चल पड़े. ये स्वामी जी की स्थिति कि लोगों को यम और नियम साथ चलाने की जरूरत है. सिंपल भाषा में कहें, जब आप धर्म में या अध्यात्म में होते हैं तो चरित्र को अंदर को बदलने के साथ साथ बाहर को बदले, तभी तभी सचमुच अंदर की उन्नति होती है. नहीं तो हम एक तरह से हिपोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं. आज का समय हो चुका है, विराम देते हैं. अब हम आरती पर